धवला पुस्तक 12 लेक्चर नंबर 14 ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ नमः सिद्धेभ्य ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् कम्मट्ठजनियवेयण उवहि समुत्तीर्णये जिडेणमिवम् वेयण महाहियारम् विविहयारम् परुवेमो। आचार्य श्री वीरसेन स्वामी रचित यह धवला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। इसमें जो चौथा खंड है इसका नाम है वेदना खंड, और उसमें वेदना भाव विधान अनुयोग द्वार की जो चूलिका है उसको हम देख रहे थे। 12वीं पुस्तक के पृष्ठ संख्या 92 पर हम आ गए, 92। यहाँ ये जो अविभाग प्रति हमने देखा था कि यहाँ 12 अनुयोग द्वार है, 92 पेज, और उसमें से हमने वो अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा की प्रारंभ उसकी बात चालू की थी। यहाँ विशेषता ये है अनुभाग स्थान किसको कहना, तो कहते ये जो अनुभाग स्थान है वो बंध समुत्पत्तिक बंध के द्वारा उत्पन्न या हत समुत्पत्तिक जो बंधा हुआ अनुभाग सत्ता का है वो घात करके हो सकता है, या घात के पश्चात और उससे घात होता है, तो हत हत समुत्पत्तिक भी स्थान होते हैं। यहाँ जब ये स्थान कहेंगे तो अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में जो एक वर्ग है परमाणु उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको हम स्थान कहते हैं। योग स्थान की बात अलग है और यहाँ की बात अलग है। इसलिए अलग है, योग स्थान में क्या देखते हम कि जीव के प्रदेश तो फिक्स नंबर में है, कितने हैं तो लोक प्रमाण असंख्यात है, और उन जिन प्रदेशों में मिनिमम अनुभाग है योग की शक्ति उसको हम एक लाइन में एक वर्गणा रूप से हम लिखेंगे इतने प्रदेश। फिर दूसरे ऐसे प्रदेश लेंगे जिसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद अधिक है, फिर एक अधिक, तो उसमें वर्गणाएं होती हैं। यानी यहाँ वर्ग हम कर्म परमाणु को कह रहे हैं, वहां वर्ग हम जीव के प्रदेश को कह रहे हैं, और उसके असंख्यात वर्गणाओं का एक स्पर्धा और असंख्यात स्पर्धक होते हैं, क्योंकि वहां सारी बातें असंख्यात में होती है, यहाँ तो अनंतों में होती है। वहां टोटल सभी मिलकर यानी एक एक परमाणु में इतना विभाग, एक एक वर्गणा में इतना, एक एक स्पर्धक में इतना, प्रतिस्पर्धक कितना कितना होता है, टोटल जो पूरा विभाग प्रतिच्छेद है उसको योग स्थान कहेंगे। यहाँ क्या विशेषता है, एक अंतिम वर्गणा के एक प्रदेश में जितना अनुभाग है उसको यहाँ अनुभाग स्थान कहेंगे। वैसा मानेंगे तो क्या दोष आएगा योग स्थान जैसे, क्योंकि कर्म परमाणुओं की संख्या हीनाधिक होती रहती है, तो उत्कृष्ट अनुभाग रह जावे और अधिक निर्जरा हो जावे तो अनुभाग स्थान घट जाएगा। समझ में आती है ना, इसलिए अनुभाग स्थान में बात अलग है, योग स्थान में बात अलग है। ये तो बात अभी अनुभाग स्थान की बात यहाँ जो उसकी चर्चा चल रही थी अपनी, पेज नंबर 91 पर फिर से दोबारा देखते हैं। यहाँ अविभाग प्रतिच्छेद की प्ररूपणा चल रही है जो 199 गाथा में हमने देखा था। अब यहाँ कहते कि जघन्य अनुभाग बंध स्थान को सोचते हुए यहाँ उनकी प्ररूपणा चलेगी। इसलिए यहाँ पहले में पहले चर्चा है अनुभाग किसको कहना, वहां ये बात बताई थी, ये समाधान में लिखा था, आठों कर्मों और जीव प्रदेशों के परस्पर में एक रूपता के कारणभूत जो परिणाम है उसको अनुभाग कहते हैं। प्रकृति को अनुभाग नहीं कहा है क्योंकि वो योग के कारण उत्पन्न होती है और ये कषाय से उत्पन्न होता है। फिर 92 पेज पर फिर दोबारा शंका पूछी गई थी के परस्पर स्पर्श के हेतुभूत गुण को, यानी जो परस्पर में बंध के कारणभूत जो गुण है उसको अगर अनुभाग कहते हैं, तो जो उदयावली में जो प्रदेश आ गए हैं वो क्या है? अभी वो छूटने ही वाले हैं, खिरने ही वाले हैं, तो क्या उसमें अनुभाग नहीं है? क्योंकि वो तो बंध का कारणभूत कहा, और यह तो छूट रहे हैं, तो क्या उसको अनुभाग नहीं मानेंगे? ये प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न ख्याल में आए? फिर से पढ़ेंगे प्रश्न के परस्पर स्पर्श के हेतुभूत गुण को यदि अनुभाग स्वीकार किया जाता है तो उदयावली में स्थित प्रदेशागरों के, उदयावली किसको कहते हैं? उदय के समय को तो उदय रूप निषेक कहते हैं, और उदय के समय से एक आवली तक जो निषेक है, वो जो क्रम से नियम से अभी उदय रूप होने वाले हैं, उसको कहेंगे उदयावली। तो उदयावली में जो प्रदेश यानी जो परमाणु है, तो क्या उनमें तो अनुभाग के अभाव का प्रश्न आएगा? उसमें उत्कृष्ट नहीं हो सकता, क्योंकि अभी हीन हो रहा है, हीन होते होते निकल जाएगा, फिर प्रदेश निकल जाएंगे, ऐसा नहीं है। समाधान करते हैं, ऐसी आशंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्थिति के क्षय से परस्पर स्पर्श का अभाव होता ऐसा नियम नहीं बनता। स्थिति के क्षय से ने अभी जो निषेक ऊपर पड़े थे वो क्रम से अपना काल एक एक समय बीतता गया है, तो वो उदय के सन्मुख हो गए हैं। तो ये उदय के सन्मुख हो गए हैं तो कहते हैं कि स्थिति का क्षय हुआ है, स्थिति घट गई है। ख्याल में आई बात? तो स्थिति घट गई है, तो वो स्थिति घटने से अनुभाग कम नहीं होता। परस्पर स्पर्श को यहाँ अनुभाग कहा, तो वो कम नहीं होता। अब यहाँ तक तो अपना कल का विषय हुआ था।
परस्पर स्पर्श में जीव और
कर्म, कर्म कर्म लेना पहली बात आई ना, आठों कर्म और जीव, पहले बताया था आठों कर्मों और जीव प्रदेशों के परस्पर में अन्वय के कारण एक रूपता के कारणभूत जो परिणाम है उसको यहाँ अनुभाग कहा था। अब हम यहाँ से अपना विषय आज पढ़ेंगे। ये कर्म का अनुभाग, कर्म का भाव है यहाँ पर, ये कर्म के अनुभाग की चर्चा है। उसमें कारणभूत तो जीव का अनुभाग, बंध अध्यवसान स्थान तो जीव का है, और अनुभाग तो कर्म का है। देखो अभी यहां से पढ़ते, अभी एक परमाणु में जो जघन्य रूप से वृद्धि को प्राप्त, वर्धित चाहिए और अवस्थित नहीं चाहिए, क्योंकि ऊपर प्राकृत में, देखो प्राकृत की चौथी लाइन, तथ एकम में परमाणु में जो जहन्नेन अवट्ठिदो अनुभागो, और जहन्नेन अनुट्ठिदो के उसले अन्य जो कोई यहाँ पाठ भेद बताया है उसमें नीचे फुटनोट में क्या लिखा है देखो, वड्ढी दो आ अ आ प्रत्यो हो, यानी अ और आ प्रति जो होती है, प्रति समझते हैं मूल ओरिजिनल प्रति, उसमें वड्ढी दो, और ता नाम की जो प्रति थी उसमें भी वड्ढी दो, ऐसे तीन प्रतियों में वड्ढी दो शब्द आया, और वड्ढी दो ही बराबर यहाँ फिट बैठता है। यहाँ कहते हैं कि जो एक परमाणु में जो जघन्य रूप से वर्धित, वर्धित है ना, वृद्धि को प्राप्त अनुभाग है। हम क्या देखते हैं, हमने वर्ग वर्गणा अनुभाग स्पर्धक कैसे कहा था कि सबसे मिनिमम अनुभाग वाले जो कोई परमाणु है उसको एक लाइन में लिखेंगे, उसको हमने वर्गणा कहा था। दूसरी वर्गणा में कौन से परमाणु को हम इकट्ठे, एक अविभाग प्रतिच्छेद से, उसका अर्थ क्या हुआ, उसमें कितना अविभाग अधिक है, एक अविभाग प्रतिच्छेद। तो अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहा, जो मिनिमम वृद्धि एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में जितना अधिक है उसी को अविभाग प्रतिच्छेद कहा। ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि एक परमाणु में जो जघन्य रूप से वर्धित यानी वृद्धि को प्राप्त अनुभाग है उसके अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा है, क्योंकि एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा था। एक ही स्पर्धक के दो वर्गणा की बात कर रहे। स्थान में जघन्य रूप से अवस्थित अनुभाग की अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा नहीं है। स्थान किसको कहा, हम बारंबार इसी को याद कर रहे, अनुभाग स्थान इन्हें अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में, एक वर्ग में जो अनुभाग है। वर्गणा के एक वर्गणा में अनंत वर्ग होते हैं। वर्गणा का अंतिम परमाणु नहीं कहने, देखो अंतिम स्पर्धक अंतिम वर्गणा का एक परमाणु लेना, उस अंतिम वर्गणा में अनंत परमाणु पड़े हैं और सभी में समान अविभाग है, तो उसमें कोई भी एक परमाणु लो, उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको यहां स्थान कह रहे हैं। अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहना, तो मिनिमम वृद्धि जहां पॉसिबल है, जो एक वर्गणा से दूसरी वर्गणा में हम देखते हैं एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़कर होता है, तो यहां कहते हैं उसको हम अविभाग प्रतिच्छेद कहेंगे। परंतु स्थान में जो जघन्य रूप से अवस्थित स्थान, इन जिसको हम जघन्य स्थान कहेंगे, वो बात अलग है, क्योंकि निर्विकल्प रूपता नहीं उपलब्ध होती वहां, निर्विकल्प रूपता नहीं उपलब्ध होती। निर्विकल्प रूपता है ना, क्या उसमें भेद नहीं हो सकते। हाँ देखो क्या कहना चाहते हैं, अविभाग प्रतिच्छेद तो फिक्स उसकी वैल्यू है, जो जघन्य जो वृद्धि का प्रमाण है उसी को अविभाग प्रतिच्छेद कहा, यानी अविभाग प्रतिच्छेद की वैल्यू तो एक ही है। अब कहते जब स्थान में जो अविभाग प्रतिच्छेद होता है, यानी स्थान है, वो तो अलग अलग हो सकते हैं स्थान, स्थान कोई पहला नंबर का है, दूसरा नंबर का है, तीसरा नंबर का है, उसमें अनेक भेद हो सकते हैं। अब इस अविभाग प्रतिच्छेद किसको कहना, समझ में आई बात, यानी जब मिनिमम जो अविभाग प्रतिच्छेद पाया जाता है सभी परमाणु में, यानी कोई एक परमाणु में, उसको और दूसरी वर्गणा का जो वहां का अनुभाग है उसमें जो डिफरेंस है कितने का है, एक अविभाग प्रतिच्छेद का। इसलिए अविभाग प्रतिच्छेद की डेफिनेशन कैसे बताई, कि जघन्य जो वृद्धि हो सकती है उसको अविभाग प्रतिच्छेद कहा। देखो अब इस अविभाग प्रतिच्छेद के प्रमाण से, यानी ये अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण निश्चित किया, इसको हमने अविभाग प्रतिच्छेद कहा, यह अंश सूक्ष्म अंश शक्ति का जघन्य अनुभाग स्थान का विभाग करने पर। अब यह अनुभाग स्थान, यानी जो मिनिमम अनुभाग स्थान, जो बंध की बात अभी चल रही है हमारी, तो बंधने वाला जो मिनिमम अनुभाग है, अनुभाग स्थान कौन सा कहेंगे, अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में एक परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको यहाँ जघन्य अनुभाग स्थान कहा। उसके विभाग करने पर वहां तो कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं उसमें, तो कहते हैं जीवों से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं। यहां तक बात समझ में आई, अविभाग प्रतिच्छेद एक यूनिट बनाया, वो कैसा यूनिट है, तो परमाणु में एक कोई अविभाग प्रतिच्छेद है, उससे मिनिमम वृद्धि कितनी हो सकती है, तो उसको कहेंगे अविभाग प्रतिच्छेद। अब इस अविभाग प्रतिच्छेद का जो यूनिट बनाया है वो जघन्य जो अनुभाग स्थान है जिस किसी का होगा, तो उसमें कितने अविभाग प्रतिच्छेद है, तो कहते हैं जीवों से अनंत गुणे है। समझ में ये वाक्य का अर्थ। अब आगे बढ़ते हैं, यहां सर्वप्रथम द्रव्यार्थिक नय का आश्रय करके जो जघन्य स्थान है उसके अविभाग प्रतिच्छेदों के अवस्थान क्रम को कहते हैं। सब में नियम तो यही होगा ना, हाँ वो अल्पभूतों में आएगी स्पेसिफिक प्रकृति, किसका जघन्य अनुभाग स्थान छोटा है और किसका अधिक है वो तो उसमें ही बताएंगे। जघन्य स्थान किसको कहना उसकी बात है, और सभी का जो जघन्य स्थान है किसी भी प्रकृति का उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कितने हैं, तो जीव राशि से अनंत गुणे हैं। देखो यथा, नीचे का पैराग्राफ हम पढ़ रहे हैं, नैगम नय का आश्रय करके जो जघन्य अनुभाग स्थान है उसके सब परमाणुओं के समूह को एकत्रित करके स्थापित करें। पूरा पढ़ते फिर उसकी चर्चा करेंगे। फिर उनमें से सर्वमंद अनुभाग के संयुक्त परमाणु को ग्रहण करके, देखो क्या कहना चाहते, जो हमने वर्ग वर्गणा स्पर्धक ये जो रचना होती है, और अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेद को हमने अविभाग प्रतिच्छेद कहा था, अब ये जो जघन्य जिसका अनुभाग स्थान है उसमें भी सारे वर्ग वर्गणाएं होगी कि नहीं होगी, तो वो कैसे होती है उसको बता रहे हैं। तो जितने भी परमाणु हैं टोटल, उसमें से जिनमें जिनमें जघन्य अनुभाग है उनको इकट्ठा करेंगे और उनको हम एक लाइन में लिखेंगे तो उसको क्या नाम देंगे?
वर्गणा,
पहली वर्गणा। यहां तक समझ में आती बात? फिर से इसको पढ़ेंगे। देखो, नैगम ने का आश्रय करके नए भूल जाओ, जो जघन्य अनुभाग स्थान है उसके सब परमाणुओं के समूह को एकत्रित करके स्थापित करे। यानी जिसने जघन्य अनुभाग बंद किया है तो वो सारे जो परमाणु है वो हम इकट्ठे एक जगह रखेंगे, उसका ढेर एक जगह रखेंगे। फिर उनमें से सर्वमंद अनुभाग से संयुक्त परमाणुओं को ग्रहण करके वर्ण गंध और रस को छोड़कर केवल स्पर्श ही का बुद्धि से ग्रहण कर, अब उसमें जो स्पर्श है उसका विभाग रहित छेद होने तक, यानी उसके विभाग करते जाओ, वो स्पर्श जो है उसके विभाग, वो शक्ति का विभाग करते जाओ, तो सबसे छोटा जो शक्ति का अंश है उसे विभाग रहित छेद, विभाग रहित छेद यानी अंतिम छेद। देखो, जिसका दूसरा विभाग न हो सके ऐसा टुकड़ा करना, जैसे पुद्गल को कैसा कहते हम, उसको खंड करते 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 अंतिम जो जिसका और विभाग नहीं होगा, छेद होने तक है ना। फिर से, केवल स्पर्श कही का बुद्धि से ग्रहण करके उसका विभाग रहित छेद होने तक प्रज्ञा के द्वारा छेद करना चाहिए। बुद्धि में आप इमेजिन करो उसके, कि हमने वो उसके भेद करके यानी छेद करते गए करते गए, तो अंतिम जो है अभी उसका दूसरा छेद नहीं हो सकता, उस नहीं छेदने योग्य अंतिम खंड की अविभाग प्रतिच्छेद संज्ञा है। अविभाग प्रतिच्छेद, जिसका अभी दूसरा छेद नहीं हो सकता, विभाग नहीं हो सकता, ये अंतिम उसका जो यूनिट है उसका, पश्चात इसको अविभाग प्रतिच्छेद कहा। उक्त प्रमाण से सब स्पर्श खंडों के खंडित करने पर ये जो एक अविभाग प्रतिच्छेद की जो वैल्यू आई उससे सब स्पर्श खंडों के खंडित सब जीवों से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद प्राप्त होते हैं। यानी बुद्धि के द्वारा हमने एक अविभाग प्रतिच्छेद का प्रमाण निकाला, अभी जितने परमाणु है उसमें जो अविभाग प्रतिच्छेद जो उसमें स्पर्श गुण का जितना जो वैल्यू थी उसको हमने भाग दिया, तो उसमें कितने अविभाग प्रतिच्छेद मिले? तो जीवों से अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद। वो एक एक परमाणु में वो मिनिमम जगन हाँ स्पर्श गुण की बता रहे हैं। क्योंकि परस्पर बंद के योग्य ऐसा कुछ स्पर्श गुण में लगा लिया, यहाँ वृक्षत्व स्निग्धत्व की बात की नहीं, बस स्पर्श गुण इतना ही कहा उन्होंने। ये यहाँ नई बात लगती है, क्योंकि स्पर्श गुण तो सभी में होगा, तो उसमें वो ज्ञानावरण के दर्शन, इसलिए अविभाग प्रतिच्छेद की वैल्यू सब समान होगी। आपका जो प्रश्न था ना, हर एक के अविभाग प्रतिच्छेद जुदे जुदे होंगे, वो फलदान शक्ति जुदी जरूर है। अब जो कुछ समझते उतना समझेंगे, जितना आगे आएगा विस्तार से तब उसको समझेंगे। देखो क्या कहना चाहते हैं, पहले हमने क्या किया, ये जितने खंड कर सकते हैं किसी अविभाग के उतने कर दिए, उसका नाम क्या लिया? अविभाग प्रतिच्छेद। तो जो एक अविभाग प्रतिच्छेद के वैल्यू है उससे जो हमने जो जघन्य में जघन्य अनुभाग वाला जो परमाणु था उसको खंडित किया, यानी उसके खंडित किया का अर्थ क्या है, उसमें ऐसे अविभाग प्रतिच्छेद कितने हो गए, तो सब जीव राशि जो है उससे भी अनंत गुणे अविभाग प्रतिच्छेद वो जघन्य वर्गणा के एक वर्ग में होते हैं, ये उसका अर्थ होता है। देखो ये अभी जघन्य में हम वर्ग वर्गणा स्पर्धकों की भी जैसे हमने निषेक की रचना करते वो अलग है, यहाँ हम सभी अनुभागों का जो बंध हुआ है उसको हम इस तरह से वर्गणाओं में उसको हम लिखेंगे, तो ये एक स्पर्धक है, दूसरा स्पर्धक है, तीसरा स्पर्धक, क्योंकि उसके वर्गणा ऐसी है ना। अभी ये जघन्य स्थान की चर्चा कर रहे हैं। जघन्य स्थान किसको कहेंगे? अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद है, उसको हमने जघन्य स्थान कहा। अब ये जघन्य स्थान में क्या पोजीशन है वो सब बता रहे। तो जघन्य स्थान में भी ये सब मिलकर जितने परमाणु है उन परमाणु को हमने यहाँ ढेर ले लिया, इस सबका परमाणु का ढेर। उनमें से जो मिनिमम अनुभाग वाले हैं उसको हमने इस लाइन में रख दिए, उसको हम वर्गणा कहेंगे, पहली वर्गणा। फिर से यहाँ पढ़ते देखो।
तो जगन्य अनुभाग स्थान और जगन्य अनुभाग वो दोनों में फर्क है।
स्थान, स्थान के
स्थान में उत्कृष्ट वर्गणा, अरे उत्कृष्ट वर्गण के, उत्कृष्ट वर्गणा के एक वर्ग में जो अव्यभाग प्रतिच्छेद है उसको स्थान कहते हैं। और जगन्य वर्ग किस प्रकार के लिया कि जगन्य अनुभाग स्थान में जो जगन्य स्पर्धक
अनुभाग स्थान, बस इसी को अनुभाग स्थान कहेंगे। जिसने ये अनुभाग स्थान बांधा है उन परमाणु की क्या पोजीशन है उसकी चर्चा अब कह रहे हैं।
तो यहाँ पे अभी
सबको मिलकर स्थान मत कहो, पर जिसने जघन्य स्थान बांधा है
उसके
उसके परमाणु जो एक लॉट उसने ग्रहण किया है ये जघन्य स्थान है। तो जिस जीव ने जघन्य स्थान बांधा है उसने जो एक लॉट परमाणु को बांधा है
उसमें
तो जो एक लॉट बांधा एक समय प्रबद्ध उसमें क्या पोजीशन है उसकी चर्चा चल रही। यहाँ तक समझ में आई बात? तो यहाँ क्या क्या, अब ये अविभाग प्रतिच्छेद को कैसे निकालना उसकी बात बताई। अब उस प्रमाण से अगर हम देखेंगे एक एक परमाणु में कितने अविभाग प्रतिच्छेद होते हैं, तो जीव राशि से अनंत गुणा, कहीं पर भी देखो हम जीव राशि से अनंत गुणा होते हैं, यहाँ तो बात आई। अब उसमें से सबसे मिनिमम को हमने यहाँ देखा, सबसे मिनिमम जघन्य अनुभाग जिसमें पाया जाता है उसको हम वर्ग कहेंगे। देखो उन सभी की वर्ग यह संज्ञा है, उनका उसका प्रमाण अनंत होकर भी संदृष्टि में आठ ऐसा ग्रहण करना चाहिए। यानी ये जो सभी वर्गों की समान अविभाग प्रतिच्छेद है मिनिमम है उसके लिए उन्होंने आठ संख्या नक्की की। एक एक परमाणु में अविभाग प्रतिच्छेद आठ है, ये संदृष्टि मानी हुई संदृष्टि है। यहाँ तक समझ में आई बात? पुनः उसी परमाणु पुंज में से उसके सदृश दूसरे परमाणु को ग्रहण कर। पहले हमने क्या किया था, मैंने बताते समय कहें कि सभी को एक इकट्ठा स्थापित करना, उनमें तो उन्होंने ऐसा कहा पहली स्टेप ये पूरा लॉट समय प्रबद्ध का है, उसमें से सबसे मंद अनुभाग वाला एक परमाणु लिया उसका नाम है वर्ग, उसमें अविभाग प्रतिच्छेद कितने, तो जीव राशि से अनंत गुणे, तो उसकी संदृष्टि है आठ। अब कहते ये जो परमाणु पुंज है उसमें इसके समान आठ वाला और एक परमाणु ग्रहण करो, उसका भी अविभाग प्रतिच्छेद आठ है। देखो तो कहते पुनः उसी परमाणु पुंज में से उसके सदृश दूसरे परमाणु को ग्रहण कर उसके स्पर्श के पहले के समान प्रज्ञा के द्वारा छेद करने पर, वो छ चाहिए, छ नहीं चाहिए, यहाँ भी उतने ही अविभाग प्रतिच्छेद उपलब्ध होते हैं। यानी इसमें भी अविभाग प्रतिच्छेद आठ है, ये दूसरा परमाणु लिया। यहाँ तक समझ में आई बात? वो क्या कहना चाहते उसको जरा हम इमेजिन करेंगे। छ हुए ना लिखना, चौथी लाइन में प्रज्ञा के द्वारा छेद, डबल च और छ लिखा है ना, नहीं आप कहाँ देख रहे, राइट से इस बाजू में पहले पैराग्राफ की लास्ट लाइन चौथी लाइन, आप पेज नंबर कौन सा देख रहे हैं, बराबर है चौथी लाइन पढ़ो, प्रज्ञा के द्वारा क्या लिखा है, छेद कैसा लिखा है, हाँ तो केवल छ चाहिए, वो प्रतिच्छेद जैसा छ लिखा है वैसा नहीं चाहिए, यहाँ भी उतने ही अविभाग प्रतिच्छेद उपलब्ध होते। यहाँ तक समझ में आई बात? अरे दूसरे
हाँ,
पहले ये पूरे समय प्रबद्ध में से केवल एक परमाणु लिया था, उसकी वर्गणा भी बनाई नहीं थी, एक वर्ग लिया वो आठ है उसका विभाग प्रतिच्छेद, फिर वो आठ वाला ही दूसरा और एक लिया उसके बाजू में रखा, यहाँ तक दो ही परमाणु लिया अभी तक है? तो कहते शंका, नहीं छिदने योग्य परमाणु का छेद कैसे किया जाता है। देखो यहाँ परमाणु को छेद नहीं रहे हैं, उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद रूप उसकी जो वहाँ के जो है उसको छेद रहे है, वहाँ जो शक्ति है उसको छेद रहे है, और ये भी बुद्धि के द्वारा। समाधान, यह कोई दोष नहीं है क्योंकि उसका केवल द्रव्य ही अच्छेद्य है, गुण नहीं, ऐसा स्वीकार किया गया। गुण को छेदना का अर्थ थे गुण के अविभाग प्रतिच्छेदों को गिनना। शंका, परमाणु के गुणों में वृद्धि एवं हानि होने पर उसका परमाणुपना कैसे विरोध को नहीं प्राप्त होगा। देखो ये परमाणु किसको कहेंगे, सबसे छोटे में छोटे जो पुद्गल का जो भाग है उसको हमने परमाणु अणु कहा, परम अणु, अभी उसका दूसरा विभाग नहीं हो सकता। ऐसे सबसे छोटे पुद्गल के जो अंश को हम अणु कहते हैं, परमाणु कहते हैं, और उसके गुणों का, गुण है नहीं, यहाँ पर्याय भी ले लेना, पर्याय को भी गुण कहते हैं, तो उसके जो अविभाग प्रतिच्छेद हीनादिक होते हैं, यहाँ लिखा है ना कि गुणों में वृद्धि एवं हानि होने पर उसका परमाणु पैसा परमाणुपना निकल जाएगा, ये उनकी शंका है। क्यों? क्योंकि परमाणु उसी को कहते हैं सबसे छोटे में छोटे को, परंतु यहाँ उन्होंने उसकी शक्ति को वृद्धि होने पर परमाणु भी बढ़ गए ऐसा मान लिया। शंकाकार की शंका यहीं से शुरुआत होती है। समाधान, नहीं, क्योंकि द्रव्य की अपेक्षा वृद्धि व हानि के अभाव का आश्रय लेकर उसका परमाणुपना स्वीकार किया गया है। क्या कहते हैं, वो द्रव्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, द्रव्य की अपेक्षा उसकी वृद्धि हानि का अभाव है। गुण यानी उसकी शक्ति के वृद्धि हानि की बात नहीं ली वहां पर, क्योंकि परमाणु में भी एक गुण से लेकर अनंत गुण तक उसकी वृद्धि हानि संभव होती है, उसके कारण परमाणु नहीं बढ़ता है, वो उसके गुण जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें वृद्धि हानि होती रहती है। यह द्वितीय वर्ग अनंत होता हुआ भी संदृष्टि में आठ संख्या रूप है, यानी उसमें भी कितने अविभाग प्रतिच्छेद है, तो कहते आठ, हमने माने हुए आठ है, तो ये दूसरा हुआ वर्ग। इसे पूर्व वर्ग के पास में स्थापित करना चाहिए, यानी अभी दो आठ हो गए हमारे पास, आठ और आठ, इस क्रम से गुण की अपेक्षा पूर्व परमाणु के सदृश एक एक परमाणु को लेकर, गुण की अपेक्षा नहीं वो पर्याय की अपेक्षा लेना हो, आप कहेंगे गुण तो सब में समान होते हैं, गुणों में क्या अधिकता हीनता होती है, तो यहाँ गुण पर्याय को भी कहते हैं, जो प्रकट अंश है उसका। तो ऐसे ही सदृश एक एक परमाणु को लेकर उन ग्रहण किए गए परमाणुओं में स्थित स्पर्श के अविभाग प्रतिच्छेद करने पर एक एक वर्ग उत्पन्न होता है, इस क्रिया को जघन्य गुण वाले सब परमाणुओं के, ये जघन्य गुण वाले जो है ना हमने लिया था यहाँ पर, यानी जिनमें मिनिमम अविभाग प्रतिच्छेद है, इसे सब परमाणुओं के समाप्त होने तक करना चाहिए। समाप्त होना है ना, क्या जो हमने एक लॉट परमाणु का पुंज वहां रखा था उसमें आठ अविभाग प्रतिच्छेद वाला एक वर्ग निकाला, फिर दूसरा निकाला, फिर तीसरा निकाला, आठ वाले सब समाप्त होने तक हम उसको सब एक के बाजू में एक कैसे लिखते रहेंगे, तो आठ 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 आठ, हम मान लेते चार ही निकले, तो चार बार आठ आठ लिखा, यहां तक समझ में आई बात। ऐसा करने पर यहाँ हमने चार ही लिखे तो वहां कितने निकलते, ऐसे ऐसा करने पर अभव्यों से अनंत गुणे और सिद्धों के अनंत वे भाग प्रमाण वर्ग प्राप्त होते हैं, यानी वो जो मिनिमम अनुभाग वाले पहली वर्गणा में इतने परमाणु पाए जाते हैं, समय प्रबद्ध में भी इतना, इसमें भी इतने, क्योंकि ये जो तो एक समय प्रबद्ध में जितना परमाणु पुंज था उसमें से तो अनंत वर्गणाओं का एक एक स्पर्धक, ऐसे अनंत स्पर्धक बने हैं, तो वो कितना बड़ा अनंत होगा। यूनिट वही होगा, मैं परमाणु भी उतने ग्रहण किए थे, यूनिट भी वही होगा, इसलिए वही होगा क्योंकि इसको हम पहली वर्गणा के परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, पूरे लॉट को कौन से डेढ़ गुणहानि से भाग देंगे, तो ये कैसी अनुभाग संबंधी गुणहानि है, वो भी अनंतों की होती है। यहाँ ओरिजिनल जो था उसको अनंत का भाग देने पर यहाँ पर भी अनंत ही आने वाले हैं। अब आगे बढ़ते हैं, उनका प्रमाण संदृष्टि में इस प्रकार है। तो ये जो अनंत है उसके बदले है ना चार बार आठ आठ लिखे, इन सब द्रव्यों की, सॉरी इन सबों की यानी इन सब की द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर वर्गणा संज्ञा है। हाँ, पहली जगन्य जो वर्गणा है उसमें इतने नंबर ऑफ वर्ग है, इसको वर्गणा कहा। शंकाकार पूछते हैं, इन सब वर्गों को इकट्ठा स्थापित किया तो उसको वर्गणा कह दिया। शंकाकार पूछते हैं, वर्गों की वर्गणा संज्ञा कैसे हो सकती है? समाधान, नहीं, क्योंकि वर्ग और वर्गणा में भेद उपलब्ध होता है, वर्गों के समूह का नाम वर्गणा है और उन्हीं के असमूह का नाम वर्ग है, उसमें से एक एक परमाणु को वर्ग कहा और समान अविभाग प्रतिच्छेद वाले परमाणुओं के समूह को वर्गणा कहा। वर्गणा एक होती है परंतु वर्ग अनंत होते हैं, इस कारण वे दोनों एक नहीं हो सकते। यहां तक समझ में आई चर्चा? आगे बढ़ते हैं। परंतु यदि वर्गों से वर्गणा का अभेद कहना चाहते हैं तो वर्गणाएं भी अनंत ही होगी, क्योंकि वर्गों के भेद से उनसे अभिन्न वर्गणा का भी भेद पाया जाता है। इसलिए वर्गणा एक भी होती है और वर्गों के बराबर भी, इस विषय में कोई एकांत नहीं है। क्या कहते हैं? जो जिस वर्गणा में आठ 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 विभाग प्रतिच्छेद है उसको एक भी कह सकते हैं, और आठ वाली एक, नौ वाली एक, उसमें यानी वर्गों के साथ अभेद करके भी उसका कथन हो सकता है, भेद करके भी कथन हो सकता है। जैसा जहां होगा उसको वहां वैसा समझना। कहीं कहीं वर्ग के जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसको वर्गणा भी नाम देने में आता है। अब आगे बढ़ते हैं। द्रव्यार्थिक नय का अवलंबन करने पर यह एक वर्गणा है और पर्यायार्थिक नय का अवलंबन करने पर यह अनंत वर्गणाएं हैं, इसलिए इसको पृथक स्थापित करना चाहिए। यानी सारे ही जो परमाणु पुंज हमने देखा था उसमें से आठ आठ अविभाग वाले सब हमने निकाले और पृथक स्थापित कर दिए। इस प्रकार स्थापित करके पुनः पूर्वोक्त पुंज में से अन्य परमाणुओं को ग्रहण कर बुद्धि से छेद करने पर अब पूर्वोक्त पुंज से एक परमाणु के अविभाग प्रतिच्छेदों की अपेक्षा इसमें एक अधिक अविभाग प्रतिच्छेद पाए जाते हैं, नौ। पहले हमने ऐसे परमाणु चिन्ह थे जिसमें आठ अविभाग प्रतिच्छेद था और उसमें से सारे आठ वाले हमने निकाल लिए, उसको एक साथ स्थापित किया। अब ये बचे हुए परमाणु पुंज में से हम ऐसे परमाणु चुनेंगे जिसमें नौ नौ अविभाग प्रतिच्छेद है। यह यहाँ पर वर्ग है, उसको यहाँ वर्ग कहेंगे, अतः उसे पृथक स्थापित करना चाहिए। पुनः इस क्रम से तत्समान एक एक परमाणु को ग्रहण कर तथा उस एक एक परमाणु के प्रतिच्छेद करके उसके सदृश सब परमाणुओं के समाप्त होने तक अनंत वर्गों को उत्पन्न करना चाहिए। यानी जो नौ नौ वाले हैं उसको सब चुन चुन कर हम निकालेंगे और उसको हम बाजू में ऐसे वहां लिखेंगे। अभी इसमें एक अविभाग प्रतिच्छेद वाले जो है नौ नौ अविभाग प्रतिच्छेद है उसमें, पहले आठ 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 थे, ये नौ 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 लिखे। यहां तक समझ में आई बात? यहां भी पहले के ही समान यह वर्गणा एक भी है तथा अनंत भी है ऐसा कहना चाहिए। वो अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा उसको एक कहेंगे और एक एक वर्ग जुदा है इसलिए उसको अनंत भी कह सकते हैं। प्रतिशंका, उसकी एकता कहाँ प्रसिद्ध है? प्रतिशंका का समाधान, ये प्रतिशंका का समाधान कौन कर रहे हैं अश्विन भाई?
ये तो लेखक कर रहे हैं।
शंकाकार कर रहे हैं कि आचार्य कह रहे
हैं? आचार्य कर रहे हैं
ना। देखो, शंका किसने पूछी? शंकाकार ने। प्रतिशंका किसने पूछी? आचार्य ने।
हाँ, तो वो आचार्य ने पूछी,
प्रतिशंका पूछी। मैं पूछती हूँ प्रतिशंका का समाधान कौन कर रहा है?
आचार्य करेगा।
आचार्य थोड़ी करेंगे, शंकाकार करेगा।
अच्छा वो उसके पास बोल
ये उनमें प्रश्नोत्तर हुए। शंकाकार ने क्या पूछा कि वर्गणा की एक संख्या को छोड़कर अनंतता नहीं हो सकती।
अच्छा आचार्य उनके पास बुला रहे।
तो आचार्य ने उसका उल्टा प्रश्न पूछा, एकता कहाँ प्रसिद्ध है, कहाँ से बात कर रहे, एकता कहाँ आपने सुनी। अभी प्रतिशंका का समाधान शंकाकार कर रहा है। वह कषाय प्रावृत के चूर्णी सूत्र में प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ लोक पूर्ण अवस्था में योग की एक वर्गणा होती है, ऐसा कहा है। आपको याद होगा समयोग हो जाता है, यानी जो पूरे जो असंख्यात प्रदेश है जीव के उसमें समान योग हो जाता है, इसलिए वहाँ एक ही वर्गणा हो जाती है उसका, एक समय के लिए एक वर्गणा होती है, ऐसा कहा गया है। लोक पूर्ण समुद्घात के घ करो होने पर समस्त जीव प्रदेशों में एक विकल्प रूप योग के होने से वर्गणा एक होती है, यह उक्त कथन का तात्पर्य है। ये शंकाकार ने अपने दलील प्रस्तुत करने के लिए उसको हेतु दिया। अब शंका का समाधान आचार्य कर रहे हैं। उसमें आप लिख सकते हैं बाजू में, पहले शंका वो तो शंकाकार ने पूछी, प्रतिशंका आचार्य ने पूछी कि शंकाकार को उन्होंने प्रूफ पूछा, तो प्रतिशंका का समाधान शंकाकार ने किया था, उसने ये प्रूफ दिया कि लोकपुरण समुदाय में एक वर्गना होती है। अब ये सब सुनकर आचार्य ने शंका का समाधान किया कि यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक वर्गना में कहीं पर अनेकत्व का भी व्यवहार उपलब्ध होता है। शंकाकार फिर वो पूछते हैं, वह किस प्रमाण से जाना जाता है, उसके लिए क्या प्रूफ है, प्रमाण क्या है। समाधान, एक प्रदेश वाली वर्गणा कितनी है, तो कहते अनंत है। देखो ये वर्गणा शब्द अलग अलग जगह आता है, योग स्थानों में भी वर्गणा कहते हैं। अभी यहाँ हमने कर्म के अनुभाग में वर्गणा स्पर्धक की चर्चा आती है। अब जो पुद्गल परमाणु है सिंगल सिंगल, तो उसको भी वर्गणाएं कहेंगे, जिसको अनुवर्गणा कहेंगे, द्व्यणुक वर्गणा कहेंगे, त्रिअणुक वर्गणा कहेंगे, चार अणुक वर्गणा कहेंगे, संख्यात अणुक, असंख्यात अणुक, अनंत अणुक भी वर्गणाएं होगी। देख यहाँ क्या कहते हैं, एक प्रदेश वाली वर्गणा कितनी अनंत है। एक प्रदेश वाली वर्गणा का अर्थ क्या है, सिंगल परमाणु
कितने अनंत
है। अभी वहां वर्गणा उसको कह रहे हैं, एक परमाणु इस विश्व में एक एक सिंगल परमाणु कितने तो अनंत है। कहते दो प्रदेश वाली वर्गणा अनंत है, वो दो द्व्यणुक वाले जो स्कंद है वो दो प्रदेश वाली वो भी अनंत है, इत्यादि वर्गणा व्याख्यान से जाना जाता है। हाँ अभी नहीं, हमने जो 23 वर्गणाएं देखी थी उसमें ये आती है बात, सिंगल परमाणु को भी वर्गणा कहेंगे, परंतु सिंगल सिंगल प्रदेश वाले कितने परमाणु है, अनंत है। हाँ। तो वो वर्गणा भी अनंत है, यानी अनंत का व्यवहार होता है ये बताने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने एक होता है इसलिए दलील क्या की थी, वो लोकपुरण समुदाय में एक वर्गणा होती है। अब यहाँ आचार्य उसके लिए कहते कहीं कहीं अनंतता का व्यवहार भी होता है, नहीं वो तो कैसे होता है, तो एक प्रदेश वाली वर्गणा अनंत है, दो प्रदेश वाली वर्गणा अनंत है, इत्यादि वर्गणा व्याख्यान से जाना जाता है। अभी हमारा वेदना खंड चल रहा है, इसके बाद वर्गणा खंड आने वाला है और ये सब बातें उसमें आने वाली है। यदि कहा जाए यह वर्गणा व्याख्यान अप्रमाण है, सो यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि व्याख्यान रूप से चूर्णी सूत्र भी समान है, इसलिए उसकी भी अप्रमाणता का क निकालो अप्रमाणता का प्रसंग आता है, यानी ना ही वर्गणा का व्याख्यान अप्रमाण नहीं है, क्योंकि उस सूत्रों में भी बताया है। पुनः इसको उठाकर ये दो चंका समाधान हो गया। हमने पहले आठ आठ वाले परमाणु एक लाइन में लिखे, फिर नौ नौ वाले लिखे। पुनः इसको उठाकर प्रथम वर्गणा के आगे रखने पर द्वितीय वर्गणा होती है। प्रथम वर्गणा कैसी, हमने आठ आठ वाले लिखे, फिर हमने नौ नौ वाले परमाणु छूने एक साथ रखे, वो सबको हमने दूसरी लाइन यहाँ उठाकर रखी, तो ये हो गई पहली वर्गणा, ये हो गई दूसरी वर्गणा नौ नौ वाले। इस प्रकार उत्तरोत्तर एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की अधिकता के क्रम से आगे आगे, यानी अभी उसके बाद 10-10 वाली रखेंगे, 11-11 वाली बताएंगे, ऐसे कितने रखना है। हमने 8 से शुरू की तो हमने 3-4 ही रखेंगे, यथार्थ में कितनी होगी तो अनंत होगी, एक एक अविभाग से बढ़ती हुई भी अनंत वर्गणाएं होगी। तो कहते एक एक अविभाग प्रतिच्छेद की अधिकता के क्रम से आगे आगे अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र वर्गणाओं के उत्पन्न होने तक तृतीय चतुर्थ पंचम आदि वर्गणाओं को उत्पन्न कराना चाहिए। वो सारे एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते हैं। इतनी मात्र वर्गणाओं को ग्रहण कर जघन्य स्थान का एक स्पर्धक होता है, यानी जघन्य स्थान जिस जीव के है उसका जघन्य स्पर्धक इस रूप से होता है।
ये समझ में नहीं है, जघन्य स्थान का एक स्पर्धक होता है।
अभी तक हमने वर्गणाओं का स्वरूप देखा, स्पर्धक किसको कहेंगे?
डबल हो जाता है, दो गुना हो जाता है उसको।
एक स्पर्धक किसको कहेंगे? दो गुना हो जाएगा तो दूसरा स्पर्धक शुरू होगा। एक स्पर्धक किसको कहेंगे? वो हाँ, कौन सी वर्गणाएं? एक एक अविभाग से बढ़ती हुई जो अभव्यों से अनंत गुणी इतनी जो वर्गणाएं हैं उनके समूह को एक स्पर्धक कहेंगे। ये जघन्य स्पर्धक हुआ, हाँ, सबसे मिनिमम अनुभाग वाला स्पर्धक हुआ। तो कहते इतनी मात्र वर्गणाओं को ग्रहण कर जघन्य स्थान का एक स्पर्धक होता है। शंका, स्पर्धक संज्ञा किसे है? समाधान, क्रम से जो स्पर्धा करता है अर्थात बढ़ता है वह स्पर्धक है। एक एक अविभाग से बढ़ती हुई वर्गणाएं थी सारी, इसके उसका नाम है स्पर्धक। शंका, वह एक कैसे है? समाधान, क्योंकि उसमें अंतर देकर वृद्धि नहीं उपलब्ध होती अतः वह एक है। क्या कहना चाहते हैं? ये 8, 9, 10, 11 मान लेते हमने 4 लिए, उसमें बीच में अंतर नहीं, 8 से लेकर एकदम 12वें पर नहीं गया है। हाँ, पहले स्पर्धक और दूसरे स्पर्धक के बीच में, यानी पहले स्पर्धक की अंतिम वर्गणा और दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा, उसमें बहुत बड़ा अंतर होगा। हाँ, क्या फायदा? ये उसका स्वरूप क्या है उसको बता रहे, चूलिका के रूप, अविभाग प्रतिच्छेद क्या होता है, जघन्य स्थान में क्या बातें होती है, ये संसार अवस्था में जघन्य स्पर्धक क्या है। ऐसे वो जघन्य स्थान में तो हमने ये देखा था, वो अंतिम स्थान उसका, आगे आगे स्थानों में तो जघन्य वही रहेगा, आगे आगे ऊपर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे? हाँ, अनंत स्पर्धक बढ़ेंगे ऊपर। ये तो देखो, ये ज्ञान का विषय है, जो केवल ज्ञानी ने जाना है और ये श्रुत ज्ञानियों ने रचना की है, इसमें तो ये पूरा ही वस्तु का स्वरूप क्लियर हो जाता है। यहाँ तो वो परस्पर में बन चुके हैं, उसका जो निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जानना क्या है हमें, तो मैं इनसे जुदा हूँ इतना ही जानना है, अपने में स्वरूप में अनुभव करना है, पर स्वरूप में स्थित नहीं रहते तो ज्ञान का विषय क्या होगा? क्योंकि मुनियों के लिए भी यही तो उनका था कि उसमें मन जो है उसको जो अवलंबन है, तो ये जो सत्य स्थिति है उसको हम आगम के द्वारा उसको नक्की करें। मुनियों ने भी लिखा है वो आगम, यानी जो सूत्र ओरिजिनल जो आए दिव्य ध्वनि में जो बातें आई उसके अनुसार उन्होंने रचना की, और उसी में उनका मन रमता है ना। नहीं तो हम खाली समय में क्या करते हैं? अन्य कुछ ना कुछ करते हैं, टीवी देखेंगे, गाना सुनेंगे, और कुछ करेंगे, पेपर पढ़ेंगे। हा? आप करते नहीं करते वो बात अलग है, पर सामान्य से क्या होगा? और मुनियों के लिए क्या यही तो है ना। देखो, सम्यक दर्शन का विषय मात्र जो शुद्धात्मा जो है वो है, जो हम शाम को अभी नियम सार में देख रहे हैं। अब ज्ञान का विषय क्या है? पूरा ही स्व पर सबको है। तो पर में तो यही है ना, पर को पर जानना है, उसका स्वरूप जान रहे, उसमें कुछ नहीं करना, तो कुछ नहीं उसमें जानकर क्या करना, अज्ञान का विनाश होता है और कुछ नहीं होता। हाँ, ये होता ना पाक विषय, विपाक विषय वगैरह जो आता है, विपाक कर्म का विपाक ही तो ये है। विपाक है ना उसका अनुभाग का फल जो मिल रहा है। हाँ देखो, यहाँ समाधान कि उसमें अंतर देकर वृद्धि नहीं होती, यानी एक एक जो वर्गणा है उसमें एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से वृद्धि होती है, बीच में अंतर नहीं होता। फिर शंका, चूंकि प्रथम वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों के समूह से जो हमने आठ माने थे, द्वितीय वर्गणा के अविभाग प्रतिच्छेदों का समूह अनंत अविभाग प्रतिच्छेदहीन है। देखो इसका अर्थ समझेंगे, तथा द्वितीय की अपेक्षा तृतीय भी उनसे विशेष अधिक अविभाग प्रतिच्छेदहीन है, इसलिए पूर्वोक्त स्पर्धक का स्वरूप नहीं बनता, क्योंकि उसमें क्रम वृद्धि अथवा क्रम हानि का अभाव है। अब ये प्रश्न पहले समझेंगे। यहाँ तो आठ आठ है, यहाँ नौ नौ है। अभी शंकाकार ऐसा क्यों पूछता है कि इसमें हीन है और एक से हीन नहीं है? तो यहाँ हमने आठ वाले चार लिखे थे, तो टोटल कितना हुआ? आठ चौक 32, नौ वाले तीन है उसे 27, और वो भी ड्रॉप एकदम नहीं होते ऐसे, दूसरी वर्गणा में कम होते हैं, चय से घटते ही है नियम से, इसीलिए गोपुच्छा दिखाई, इसीलिए गुणहानि भी होगी, अनंत स्पर्धक जाके उनकी संख्या आधी भी होगी, ऐसा नियम ही है, ये नियम है। जैसे हमने स्थिति में भी देखते थे ना, स्थिति में भी प्रदेशों की क्रम से हानि दिखाते थे, प्रदेश गुणहानि स्थानांतर कहते थे, ये अनुभाग की अपेक्षा बता रहे, अनुभाग की अपेक्षा भी प्रदेशों को ही ले रहे हैं, यानी एक एक वर्ग यानी एक एक परमाणु उसमें अविभाग प्रतिच्छेद, अविभाग प्रतिच्छेद एक एक से बढ़ रहा है, परमाणु एक एक चय से कम हो रहे हैं, संख्या परमाणु की कम है, तो ये ग्रैंड टोटल उस वर्गणा का ग्रैंड टोटल अनुभाग कम हो जाएगा, और वो एक से कम नहीं होगा, अधिक से कम होगा। जैसे आठ के हमने चार लिखे, नौ के तीन लिखे, तो उसमें अविभाग प्रतिच्छेदों में एकदम ड्रॉप आ गया, क्रम से कहाँ हुई, अंतर देकर हानि हो गई है, ये कहना, ये शंकाकार की शंका क्या है वो उसको हम देख रहे हैं। अनुभाग एक सिंगल परमाणु का बढ़ रहा है, सिंगल में बढ़ा है, परंतु टोटल अगर ले लेंगे
तो
कम हो जाता है, ये प्रश्न है उनका, अभी उसका उत्तर देंगे। समाधान नहीं, क्योंकि समान धन वाले, धन यानी चीज की वैल्यू समान, यानी आठ आठ वाले समान धन वाले परमाणु पुंज को अप्रधान करने वाले भाव विधान अनुयोग द्वार में एक श्रेणी वृद्धि को छोड़कर नाना श्रेणी रूप वृद्धि व हानि का ग्रहण नहीं किया गया है, और एक श्रेणी से क्रम वृद्धि न हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वह पाई जाती है। क्या कहना चाहते हैं? यहाँ समान धन वाले, सुनो इसी का अर्थ बता रहे, समान धन वाले ने सारे आठ आठ वाले, तो आठ आठ वाले कितने हैं उसकी वैल्यू छोड़ दो, वो कितने हैं उससे मतलब नहीं, आठ वाले हैं ना तो आठ को ग्रहण करो, फिर नौ वाले हैं तो नौ को ग्रहण करो, सिंगल सिंगल का जो प्रमाण है उसको ग्रहण करो, तो वो क्रम से बढ़ रहा है, एक एक वर्ग में एक एक परमाणु में वो क्रम से हो रहे हैं, टोटल कितने हैं उसी समूह को उसको गौण करना है, क्योंकि यहाँ भाव की प्रधानता है, यहाँ तो वो वैल्यू कितनी उसकी बात है। फिर से देखो, फिर इसको पढ़ते, आपके प्रश्न का उत्तर चाहिए था, तो कहते कि क्रम हानि वृद्धि होती होगी, तो कहते ऐसा नहीं है, क्योंकि क्यों नहीं है, तो समान धन वाले परमाणु पुंज को अप्रधान करने वाले यानी उसको गौण करने वाले, यानी समान धन वाले कितने परमाणु है उसको गौण कर दो, परमाणु पुंज यानी वर्गणा हो गई आपकी, तो उसका टोटल अविभाग प्रतिच्छेद नहीं लगेगा, एक वर्ग का अविभाग प्रतिच्छेद उस वर्गणा का अविभाग प्रतिच्छेद कहने में आएगा, यानी यहाँ एक वर्ग को ही वर्गणा कह सकेंगे उस अपेक्षा से। तो कहते हैं कि समान धन वाले परमाणु पुंज को अप्रधान करने वाले भाव विधान अनुयोग द्वार में, ये भाव विधान चल रहा है ना, वेदना भाव विधान चल रहा है, यहाँ एक एक परमाणु में जो अविभाग प्रतिच्छेद स्थान को भी हम उसको ही कहेंगे स्थान, उस द्वार में एक श्रेणी वृद्धि को छोड़कर, एक श्रेणी वृद्धि बताई ना, एक जो एक हाँ एक एक से बढ़ता हुआ जो श्रेणी, नाना श्रेणी रूप वृद्धि व हानि का ग्रहण नहीं किया, यह अनेक प्रकार से वो श्रेणी नहीं बताई है, ये एक रूप जो जिस विधि से बताए उसी की बात है, और एक श्रेणी से क्रम वृद्धि न हो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि वह पाई जाती है। फिर शंका, भाव विधान अनुयोग द्वार में समान धन वाले परमाणुओं की विवक्षा क्यों नहीं की गई है? उसका समाधान, किन यहाँ नंबर ऑफ सभी जितने परमाणु है उसका टोटल अविभाग क्यों लिया, टोटल क्यों नहीं काउंट किया? आठ वाले चार परमाणु है तो 8 × 32 कहना था, 9 × 27 कहना था, उसको क्यों अप्रधान कर दिया? समाधान, बद्धानुभाग की यानी जो अनुभाग बंधा हुआ है उसकी कांडक घातों के बिना उत्कर्षण और अपकर्षण के द्वारा वृद्धि व हानि नहीं होती। इस बात के ज्ञापनार्थ वहां समान धन वाले परमाणुओं की विवक्षा नहीं की गई है। क्या कहना चाहते हैं? यानी जितना अनुभाग बंधा है उत्कर्षण और अपकर्षण से वो अनुभाग स्थान बदलता नहीं है। कैसे? कुछ परमाणु नीचे उतर ऊपर भी चले जावे तो सत्ता में जो उत्कृष्ट अनुभाग वाले कुछ परमाणु तो पड़े रहेंगे, क्योंकि उत्कर्षण अपकर्षण पूरे का नहीं होता है, कुछ परमाणुओं का होता है, इसलिए वो स्थान तो बदलेगा नहीं उत्कर्षण अपकर्षण के द्वारा। पर स्थान कब बदल सकता है? कांडक घात के द्वारा बदल सकता है। इस बात के ज्ञापनार्थ वहां समान धन वाले परमाणुओं की विवक्षा नहीं की गई है। फिर शंका, उसका ज्ञापन किस लिए कराया जा रहा है? समाधान, एक परमाणु में स्थित अनुभाग की स्थान रूपता बतलाने के लिए उसका ज्ञापन कराया जा रहा है। क्या कहना चाहते हैं? अगर उसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं तो फिर ये पूरा वर्गणा स्पर्धा के क्यों बता रहे हो? केवल अंतिम में वो होता है इतना बता दो ना। पर हमने क्या कहा था, अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के एक वर्ग में, तो ये स्पर्धक क्या होते, वर्गणा क्या होते, वर्ग क्या होते, वो समझना तो चाहिए। तो उसी को समझाने के लिए पूरी ये बता रहे। भिन्न परमाणुओं में स्थित अनुभाग स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि इस प्रकार से एक ही अनुभाग स्थान में अनंत स्थान रूपता का प्रसंग आता है। क्या कहना चाहते हैं? अन्य अन्य परमाणुओं में जो अनुभाग है वो सबको काउंट करने उसको स्थान नहीं कहेंगे, केवल अंतिम वर्गणा के एक परमाणु में कहेंगे। अगर वहां अनंत परमाणु है तो अनंत स्थान हो जाएंगे। यदि कहा जाए इस प्रकार से योग स्थान के साथ व्यभिचार होना संभव है तो यह कहना भी ठीक नहीं है। प्रश्नकार पूछ सकता है, योग स्थान में तो हमने टोटल जीव के जितने प्रदेश है और उसमें जो अलग अलग योग होता है उसकी सब ग्रैंड टोटल को हमने वहां योग स्थान कहा था, तो उसके साथ दोष का प्रसंग आ जाएगा। तो कहते ऐसा नहीं है, क्योंकि एक द्रव्य शक्ति से योग स्थान की एकता में कोई विरोध नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? पूरे सबका मिलकर जो हमने एक योग स्थान कहा तो उसको एक योग स्थान कह ही देते हैं ना, भले वो सबका मिलकर है परंतु उसकी वैल्यू उतनी रहेगी। उसके नेक्स्ट जो योग स्थान होता है उसमें इतने अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा होते हैं। जीव प्रदेशों के भेद से भी स्थान भेद होना संभव नहीं है, क्योंकि अवयवों के भेद से द्रव्य भेद असंभव है। अब यहां आते शंका 97 पेज पर, खंड स्वरूप से स्थित कर्म परमाणुओं में चूंकि एक रूपता विद्यमान है अतएव समान धन वाले उनका भी ग्रहण क्यों नहीं करते? यहां तो कहते जीव प्रदेश और कर्म इकट्ठे हो रहे हैं ना, एक रूप हो रहे हैं। अब कहते जीव प्रदेश तो उसके तो जीव के ही अवयव है, उसके तो भेद नहीं हो सकते, परंतु कर्म तो अलग अलग जुदे जुदे हैं, उनके तो भेद हो सकते हैं, तो उनमें समान धन वालों को क्यों नहीं ग्रहण किया? समाधान, नहीं, क्योंकि उनमें द्रव्य स्वरूप से एकता नहीं है। यदि उनमें द्रव्य स्वरूप से एकता मानी जाए तो फिर भेद होना अशक्य है, क्योंकि उनमें द्रव्य स्वरूप से एकता है, जैसे जीव आकाश व धर्मास्तिकाएं। दूसरे, स्पर्धक प्ररूपणा एक श्रेणी का ही आश्रय करके स्थित है, क्योंकि इसके बिना योग स्थान में स्पर्धकों के अभाव का प्रसंग आता है। परंतु ऐसा है नहीं, क्योंकि योग स्थान में सूत्र प्रसिद्ध स्पर्धक प्ररूपना पाई जाती है। यानी योग स्थान की बात अलग है और यहाँ बात अलग है, ये बारंबार बता रहे हैं। यदि कहा जाए ऐसा स्वीकार करने पर अनंत वर्गणाओं से एक स्पर्धक होता है, यह कथन विरोध को प्राप्त होगा? सो भी नहीं है, क्योंकि एक वर्ग के भी द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वर्गणात्व तो सिद्ध है। क्या कहना चाहते हैं? हमने क्या देखा था, एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते हुए जो परमाणु एक वर्गणा में जितना है, दूसरे वर्गणा के एक एक वर्ग में एक अविभाग प्रतिच्छेद ज्यादा है, टोटल वर्गणा में नहीं, फिर भी क्या कहते हैं, अनंत वर्गणाओं के समूह को स्पर्धक कहते हैं। तो वर्गणा कहने से पूरे वर्गों का टोटल अविभाग प्रतिच्छेद नहीं ले रहे, उसमें से आठ ही ले रहे, आठ से नौ एक अधिक है, नौ से दस एक अधिक है, दस से ग्यारह एक अधिक है अपने उदाहरण में। पर वहां ऐसा नहीं कहा एक वर्गणा कहने से आठ चौक बत्तीस, दूसरी वर्गणा कहने से नौत्रिक सत्ताईस, ऐसा नहीं ग्रहण किया, क्योंकि एक वर्ग में पूरी वर्गणा उसमें उपचार से कह दिए, यानी आठ वाली वर्गणा नौ वाली वर्गणा इसे हम कहेंगे, ऐसा उपचार हो सकता है, यानी एक परमाणु में पूरी वर्गणा का उपचार कर दिया है, इसीलिए उसको कहते एक वर्ग को द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा वर्गणा कह देते हैं। ये समाधान पूरा हुआ। फिर शंका, भिन्न द्रव्य में रहने के कारण यदि अनुभाग की एकता स्वीकार नहीं की जाती है तो फिर एक श्रेणी को भी स्पर्धक नहीं कहा जा सकता, क्योंकि भिन्न द्रव्य वृत्तित्व की अपेक्षा उसमें कोई भेद नहीं है। क्या कहना चाहते हैं? अगर वर्गणा में अलग अलग परमाणु है और ये अलग अलग वर्गणाओं के समूह को भी आप स्पर्धक क्यों नाम दे रहे हैं? कहते हैं यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि क्रमशः एक श्रेणी रूप से अवस्थित समस्त विभाग प्रतिच्छेद एक अंतिम परमाणु में पाए जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? किसी भी स्पर्धक के अंतिम वर्गणा में भी एक स्पर्धक की बात करते थे, एक स्पर्धक यहाँ आठ नौ दस ग्यारह हम लिखेंगे, ग्यारह तक हम लिखेंगे, तो जो ग्यारह लिखने से उसमें आठ नौ दस सब अंतर्भूत है। अगर हम अंतिम जो जघन्य स्थान की बात करेंगे यहाँ का विभाग प्रतिच्छेद, परंतु ये जघन्य से लेकर यहाँ तक सब कुछ है, इसलिए उसमें वो गर्भित है, ये कहना चाहते हैं। हाँ हाँ दो बार चाहिए, मैंने समझाने के लिए एक बार लिखा। यहाँ लिखा ना, नीचे का समाधान फिर पढ़ती हूँ। यह कोई दोष नहीं, क्योंकि क्रमशः एक श्रेणी रूप से अवस्थित, एक श्रेणी रूप से अवस्थित है ना, क्या जो आठ नौ दस ऐसा समस्त अविभाग प्रतिच्छेद एक अंतिम परमाणु में पाए जाते हैं। भिन्न द्रव्य में रहने वाले अविभाग प्रतिच्छेदों के स्पर्धक रूपता संभव भी नहीं है, क्योंकि अंतिम परमाणु में रहने वाले उक्त अविभाग प्रतिच्छेदों को ग्रहण करने पर पुनरुक्ति दोष का प्रसंग आता है, अथवा भिन्न द्रव्य में रहने वाले अविभाग प्रतिच्छेदों के एक होने का विरोध आता है। यानी ये बराबर, यानी ये अनुभाग स्थान कहने पर बारंबार ये बता रहे कि जो अंतिम जो वर्गणा के अंतिम जो एक वर्ग है स्पर्धक की, उसका अविभाग प्रतिच्छेद ग्रहण करना है, तो हमने कहा वो लाख है तो लाख में एक से सभी कुछ उसमें गर्भित है, इतना कहना है। शंका, यदि ऐसा है तो एक व नाना श्रेणी स्वरूप से प्रदेश रचना प्ररूपना किस लिए की जाती है? समाधान, नहीं, क्योंकि एक परमाणु में अवस्थित इसी अनुभाग स्पर्धक के अविनाभावी अनुभाग प्रदेशों की प्ररूपना द्वारा उक्त रचना की प्ररूपना की गई है। क्या कहना चाहते हैं? यदि वो केवल अविभाग प्रतिच्छेद ही बताना है तो प्रत्येक वर्गणा में प्रदेशों की संख्या क्यों बताते हैं? यहाँ तो एक एक अविभाग प्रतिच्छेद बढ़ रहा है उसके एक एक वर्ग में, तो वहां नंबर ऑफ प्रदेश कहने की क्या जरूरत थी? तो प्रदेशों की रचना क्यों बता रहे हैं? तो कहते जिसके व्यतिरेक का निश्चय नहीं है उसके अन्वय के विषय में निश्चय नहीं हो सकता, क्योंकि अन्यत्र वैसा पाया नहीं जाता। क्या कहना चाहते हैं? वो प्ररूपना इसलिए बताई गई है कि वो उसका सही ज्ञान हो जाए इसलिए। अब तक तो हमने क्या देखा, पहला स्पर्धक क्या होता है। हमने वो आठ आठ वाले परमाणु को एक लाइन में रखा, उसको पहली वर्गणा कहा। नौ नौ वाले वो दूसरी वर्गणा, दस दस वाले तीसरी वर्गणा, ऐसे वो अनंत वर्गणा हमने एक लाइन में लिखी। वो कैसी है? एक एक अविभाग प्रतिच्छेद से बढ़ते हुए वर्गों को लेना। वर्ग को ही वर्गणा कह दिया हमने, अब उसको पहला स्पर्धक कह दिया। यहां तक बात हो गई। अब उसके आगे इस प्रथम स्पर्धक को पृथक स्थापित करके पूर्वोक्त परमाणु पुंज में से एक परमाणु को ग्रहण कर बुद्धि से छेद करने पर सब जीवों से अनंत गुणे मात्र अविभाग प्रतिच्छेदों के द्वारा अंतर करके। देखो क्या कहा, अभी तो हमने आठ नौ दस ग्यारह सब ले लिए, अभी हमने जो बचे उनमें से कोई मिनिमम अनुभाग वाले लिए, तो उसमें कितना अविभाग प्रतिच्छेद था, तो बीच में अंतर कर दिया। 11 के बाद इतना अंतर हुआ, अनंतों का अंतर हुआ। फिर वह 16 वाले कुछ परमाणु मिले, तो कहते अनंत का अंतर देकर द्वितीय स्पर्धक का जघन्य अन्य वर्ग उत्पन्न होता है। संदृष्टि में इसका प्रमाण है 16। समझ में आती है बात? पहले हमने आठ आठ वाले लिए, नौ नौ वाले लिए, दस दस वाले लिए, 11 वाले भी लिए थे ना उसमें, हाँ 11 वाले भी लिए, फिर उसमें अंतर देकर फिर 16 वाले ग्रहण किए। इस क्रम से अभव्य सिद्धिकों से अनंत गुणे व सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र समान धन वाले परमाणुओं को ग्रहण करके परमाणु प्रमाण वर्गों के उत्पन्न कराने पर द्वितीय स्पर्धक की प्रथम वर्गणा होती है। यानी 16-16 वाले कितने हैं, तो वो ही अनंत होते हैं, वो दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा हुई। इसे प्रथम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा के ऊपर अंतर को लांग कर स्थापित करना चाहिए। यह अंतर किस अपेक्षा से है?
अविभाग,
हाँ अनुभाग की अपेक्षा। परंतु परमाणु की संख्या की अपेक्षा कहेंगे तो उसको एक लाइन में लिखेंगे, वो एक जैसे ही घटता हुआ। इस क्रम से वर्ग वर्गणाओं और स्पर्धकों को जानकर पूर्वोक्त परमाणु पुंज के समाप्त होने तक उत्पन्न कराना चाहिए। क्योंकि हमने वो जघन्य स्थान में क्या क्या होता है उसके देखे थे, तो जघन्य स्थान में जो कोई परमाणु उसके थे, उसका जो अविभाग प्रतिच्छेद था, सबसे पहले हमने आठ आठ वाली निकाली अलग, नौ नौ वाली, दस वाली, ग्यारह वाली, फिर अंतर देकर 16 वाली, 17 वाली, 18 वाली, 19 वाली, फिर अंतर देकर 24, 25, 26, 27 वाली, फिर अंतर देकर 32, 33, 34, 35 वाली, ऐसा अंत तक हम गए। तो कहते वो नंबर ऑफ स्पर्धक भी कितने होते हैं, तो अभयवंशी अनंत गुणे। यहां अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा संबंधी एक परमाणु में स्थित अनुभाग जघन्य स्थान रूप है। यानी ये जघन्य स्थान रूप अनुभाग वाला यहाँ पाया जाता है, और ये सबका ये इसी को जघन्य स्थान कहेंगे। मतलब जघन्य स्थान हम केवल इस अनुभाग को कहेंगे, परंतु इसमें ये सब बातें गर्भित है उसके अंदर, ये कहना चाहते। सबका टोटल, ग्रैंड टोटल नहीं करनी है, एक ही परमाणु का अविभाग प्रतिच्छेद लेना है और उसी को स्थान कह रहे हैं। अब 99वें पृष्ठ पर आते हैं। यहां यह संदृष्टि मूल में देखिए, देखो ऊपर चले जाना। ये पहला वर्टिकल कॉलम नीचे से ऊपर देखना, आठ आठ आठ, चार बार है ना, तो चार के बीच में तीन उभी डंडी करो, आठ 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 आठ, तो समझने के लिए ऐसा होगा। यानी ऐसा लिखेंगे आठ 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 आठ, ऐसा करेंगे, फिर नौ 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 ऐसा लिखेंगे, चार एक निकाल दो उसमें से, तीन बार चाहिए। फुटनोट में देखो, फुटनोट में उन्होंने तीन बार लिखा है ना, वो तीन बार सही है। फिर दस दस दो बार लिखा, क्योंकि एक एक से घटते हुए बताए, फिर ग्यारह लिखा। आप कहेंगे 16 में उससे भी एक से भी कम बार क्या होगा, तो अभी वो छोड़कर उन्होंने डायरेक्ट केवल उसमें 16 वगैरह लिखने की कोशिश की है, ये समझाने के लिए इस तरह से लिखा था पहले। बाद में जो दूसरा स्पर्धक 16 से शुरू होता है, उसमें 16 वाले, 17 वाले, 18 वाले, 19 वाले, फिर जो तीसरा स्पर्धक है। देखो इसमें क्या समझना है, पहले स्पर्धक की पहली वर्गणा का जो एक वर्ग है उसमें 8 था, दूसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा में जो एक एक वर्ग है वो 16 है, तीसरे स्पर्धक की पहली वर्गणा में 24 है, फिर चौथे स्पर्धक में 32 है, पांचवे स्पर्धक में 40 है, छठे में 48 है, यानी जो नंबर ऑफ स्पर्धक छठा है तो वहाँ विभाग प्रतिच्छेद भी वो 8 वाला है, उससे 6 गुना हो जाता है। ये मूल में उन्होंने संदृष्टि बनाई है। ऊपर 48, 49, 50, 51, 51 वाला अंतिम स्पर्धक की अंतिम वर्गणा 51 होगी उसमें, आपके उदाहरण में ऊपर संदृष्टि देखो, हाँ वो 51 हो गया है ना, वो तो जगन्य स्थान उसको कहेंगे हमें। तो ये जगन्य स्थान जो उत्पन्न हुआ वो सब जीवों से अनंत गुना है। इस प्रकार एक स्थान में वर्गणाओं और स्पर्धकों को स्थापित करके अविभाग प्रतिच्छेदों की प्ररूपणा करते हैं, यानी वो वर्गणा और स्पर्धकों की अपेक्षा कहेंगे, वह अविभाग प्रतिच्छेद द रह गया प्ररूपणा 3 प्रकार की है, वर्गणा प्ररूपणा, स्पर्धक प्ररूपणा और अंतर प्ररूपणा। शंका, अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा के साथ वह 4 प्रकार की प्ररूपणा क्यों नहीं कही गई है, क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कहना था ना, 4 बातें बतानी थी, अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा, वर्गणा प्ररूपणा, स्पर्धक प्ररूपणा, अंतर प्ररूपणा, उसके बदले उसको अलग निकाला और ये 3 बताया, ऐसा क्यों? समाधान, नहीं क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेदों के अज्ञात होने पर, जब अविभाग प्रतिच्छेद ही नहीं मालूम है तो उनके आधार का कथन करना विरोध को प्राप्त होता है, ऐसा मानकर अविभाग प्रतिच्छेदों की प्ररूपणा पहले ही कराए है। अभी हमने जो देखी तो अविभाग प्रतिच्छेदों की प्ररूपणा हो गई, उनमें से वर्ग प्ररूपणा 3 प्रकार की है, प्ररूपणा, प्रमाण और अल्पबहुत्व। हाँ क्योंकि उसमें ऊपर तो वर्ग का नाम लिखा नहीं, वर्गणा चाहिए, तथ्य वगण परुवणा तिवी, हाँ बराबर। मैं भी सोच रही थी वर्ग क्यों आया है बीच में, क्योंकि अभी जो 3 प्ररूपणाओं के नाम बताए उन्होंने, वर्गणा प्ररूपणा, स्पर्धक प्ररूपणा और अंतर प्ररूपणा, तो पुराने पुस्तक में वर्ग को वर्गणा करो, उनमें से वर्गणा प्ररूपणा 3 प्रकार की है और उसके लिए ऊपर रेफरेंस देना तथ्य वगण परुवणा तिवी, हाँ कौन से 3 प्ररूपणा, यानी है बस ये प्ररूपणा, उसका प्रमाण और अल्पबहुत्व। इनमें से प्ररूपणा सुगम है क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेदों की प्ररूपणा करने से ही वर्गणा संज्ञा वाले अविभाग प्रतिच्छेदों का अस्तित्व सिद्ध हो जाता है, यानी वो अविभाग प्रतिच्छेदों को बताने वाले ही वर्गणा वगैरह वो बताते हैं। अब प्रमाण का कथन करते हैं, यथा वर्गणाएं अनंत है जो अभव्य सिद्धों से अनंत गुणी है और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र है, ये प्रमाण प्ररूपणा समाप्त हुई, ये तो बहुत बार बता चुके हैं, है ना। अब अल्पभूत्व कहते हैं, जघन्य वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद सबसे स्तोक है, हमने जैसे 8 माना हुआ था यह मिनिमम है, उनसे उत्कृष्ट वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे हैं। गुणकार क्या है? अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र गुणकार है, किसी भी इसके लिए तो यही प्रमाण बता रहे कारण कि यहां अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रायिक के जघन्य बंध का ग्रहण करने से वहां अवस्थित स्पर्धक का अंतर उपलब्ध होता है।
ये समझ में नहीं आया जीव समयवर्ती सूक्ष्म संप्रदाय
के जगन्य स्थान बता रहे हैं।
हाँ, जगन्य स्थान बताया
तो जगन्य स्थान कब होगा जब उसका मिनिमम बंद हो रहा है। बंद स्थान जगन्य कब होगा?
हाँ,
कब होता है?
हाँ,
किसका? ज्ञानावरण की बात है ना यहाँ पर, क्योंकि वो स्पर्धक रूप से बन रही है।
वो कैसे उपलब्ध? हाँ, वो ही मेरा क्वेश्चन।
क्या क्या क्या
यहाँ पे इसे बताया? वहाँ पे अवस्थित स्पर्धक का अंतर उपलब्ध होता है।
अवस्थित, देखो देखो, कारण कि यहाँ अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्रदाय के जघन्य बंध का ग्रहण करने से वहाँ अवस्थित स्पर्धक का अंतर उपलब्ध होता है, यानी वहाँ जो पाया जाएगा यानी वहाँ जघन्य से उत्कृष्ट कितना गुना है वो बता रहे हैं।
तो यहाँ पे इसे समझदार प्रतिस्पर्धक जो अंतर होता है वो समान ही होता है, एक स्पर्धक के दूसरे स्पर्धक में अंतर होता है।
वो तो समान सब सर्व जगह समान होगा, वो तो समान होगा, परंतु यहाँ किसमें और किसमें लिख रहे हैं? देखो,
नहीं, वो समान कैसे होगा? जो अभी जगन्य वर्गणा है, प्रथम स्पर्धक की जगन्य वर्गणा में जो अविभाग प्रतिच्छेद है उसके दूसरे स्पर्धक में अविभाग प्रतिच्छेद
दूसरे ने अंतिम वर्गणा का अंतिम वर्ग अंतिम स्पर्धक के अंतिम वर्गणा
डबल का भी होगा
दूसरे स्पर्धक में।
दूसरे स्पर्धक तो वहाँ पे अंतर जो है वही अंतर दूसरे स्पर्धक से तीसरे स्पर्धक
वही अंतर होगा,
उतना ही अंतर होगा।
अंतर सब समान होना चाहिए।
तो वर्गणाओं का प्रमाण बढ़ता जाता है ऊपर ऊपर के स्पर्धक,
क्यों?
क्योंकि अविभाग प्रतिशत डबल हो गए।
नहीं, देखो, हम दूसरा यहाँ उदाहरण लेते हैं, मेरा वाला संदृष्ट, 100 वाला, 101 वाला, 102 वाला, 103 वाला, चार मिल ले। दूसरे स्पर्धक में 200, 201, 202, 203 अंतर समान हुआ ना। ऊपर 300, 301, 303 इस तरह से। ये जितना अंतर 103 से 200 में है उतना ही अंतर 203 और 300 में है।
97
इसको अंतर कहते हैं। आपका क्या कहना था?
नहीं, मैं सोचा कि अविभाग प्रतिशत डबल हो जाता है तो अंतर भी डबल होगा।
अंतर कैसे? इसको अंतर कह रहे हैं। 103 और 200 में कितना का अंतर पड़ा?
97 का।
वैसे उतना ही अंतर 203 और 300 में पड़ेगा, उतना ही अंतर 303 और 400 में पड़ेगा। अब ये जघन्य और उत्कृष्ट जो देख रहे हैं, तो जघन्य मान लेते हैं ना 100 से ऐसे 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 होते थे, मान लेते 10 स्पर्धक बने तो 100 से 1000 हुआ।
हाँ।
तो 1000, 1001, 1002 और 1003 जो कुछ है मैंने ऐसे ही फिगर दी। तो 100 से 1003 कितने गुना है ये कह रहे हैं। ये अल्प बहुत्व में यही बात पढ़ रहे थे हम, अभी फिर पढ़ो। अल्प बहुत्व कहते हैं जघन्य वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद सबसे स्तोक है, 100 हमने मान लिया। ये मेरी वाली संदृष्टि यहाँ पढ़ते हैं। अब कहते हैं उनसे उत्कृष्ट वर्गणा में अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे, वो 1003 माने हमने गुण। ये समझाने के लिए वहाँ लिखो मत, यहाँ मैंने जो समझाने के लिए बताया, क्योंकि वो यहाँ 100 है तो 10वें में 1000 हुए और उसमें और जो वर्गणा ऊपर चढ़कर तो 1000 हमने चार चार वर्गणाएं मानी ना। यहाँ 100, 101, 102, 103 मानी थी, वहाँ 1000, 1001, 1002, 1003 मानी है। तो 1003 वाला अनुभाग होगा कि नहीं वहाँ पर? यहाँ केवल एक एक वर्ग का अनुभाग लेना है, टोटल ग्रैंड टोटल नहीं लेनी है। एक वर्ग को ही यहाँ वर्गणा कहने की पद्धति है। तो ये 100 से 1003 वो अनंत गुना हुआ ये कह रहे हैं। तो गुणकार क्या है? अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र गुणकार है, कारण कि यहाँ अंतिम समयवर्ती सूक्ष्म सांप्राय के जघन्य बंध का ग्रहण करने से। ये जघन्य बंध स्थान जो देख रहे वो किसका है? तो सूक्ष्म सांप्राय के अंतिम समय वाले का है। वहाँ अवस्थित स्पर्धक का जघन्य अंतर उपलब्ध होता है, वहाँ जो पाया जाता है अंतर उसकी बात यहाँ बता रहे हैं। समझ में आई बात? उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट वर्गणा में अजघन्य और अनुत्कृष्ट, जो उत्कृष्ट भी नहीं और जो जघन्य भी नहीं, 100 को भी छोड़ दो और 1003 को भी छोड़ दो, ये अजघन्य अनुत्कृष्ट हो जाएगा। अनंत गुण है, गुणकार क्या है? सर्व जगह वही प्रमाण होगा, अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और हुआ, और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र गुणकार है। यह प्ररूपणा एक श्रेणी का आश्रय करके की गई है। एक श्रेणी ने जो हमने एक वर्ग में एक एक से बढ़ते हुए बताए, वो एक श्रेणी के आश्रय से बताई है, क्योंकि इसके बिना उत्कृष्ट वर्गणा की अपेक्षा अजघन्य अनुत्कृष्ट वर्गणा में अनंत गुणत्व नहीं बन सकता। क्या कहना चाहते हैं? अगर हम ग्रैंड टोटल लेते हैं तो ये बात यहाँ इसे अल्पभूत्व नहीं बन सकता। एक सिंगल सिंगल परमाणु की अभिपेक्षा अगर अनुभाग लेंगे तो ही बात होगी। क्यों? क्योंकि अगर ग्रैंड टोटल लेंगे तो हमने देखा था 8, 32, 9, 27 तो ऊपर ऊपर कम होते जाएंगे, तो ऊपर की अपेक्षा अगर हम ग्रैंड टोटल लेंगे अंतिम वर्गणा की तो उससे वो अनंत गुणा नहीं बनेगा, उससे तो जुदी जात का उसका प्रमाण आ जाएगा। अब स्पर्धक प्ररूपणा तीन प्रकार की है, प्ररूपणा प्रमाण और अल्पभूत्व। प्ररूपणा सुगम है क्योंकि अविभाग प्रतिच्छेद प्ररूपणा से ही उसकी प्ररूपणा हो जाती है। अभी जो हमने देखा ना स्पर्धक का स्वरूप क्या है, वो अविभाग प्रतिच्छेदों में ही समझा दी उन्होंने। अब स्पर्धकों का प्रमाण कहते हैं, उनका प्रमाण कितना है? सर्वत्र अवस्थित संज्ञा वाली अनंत वर्गणाओं से एक स्पर्धक होता है। ये समझ में आती बात? यानी सर्वत्र वर्गणाओं का प्रमाण समान है, जो मैंने बताया था 100, 101, 102, 103, चार चार ही, हर एक स्पर्धक में मैंने चार चार मानी थी, 200, 201, 202, 203, तो स्पर्धकों के में वर्गणाओं का प्रमाण समान हो गया। क्या कहा? सर्वत्र अवस्थित संज्ञा वाली अनंत वर्गणाओं से एक स्पर्धक होता है, वे जघन्य बंध स्थान में अभव्य सिद्धों से अनंत गुणे वह सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र होते हैं, प्रमाण समाप्त हुआ।
तो ये भी जो स्पर्धक जो बताया आपने, एक स्पर्धक में वर्गणा वो भी अव्यय से
फिक्स है,
अव्यय से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत
टोटल नंबर भी उतने ही प्रमाण अलग अलग है। अनंतों का प्रमाण अलग है, पर द्रव्यातिक नहीं की अपेक्षा कथन क्या है? अव्ययों से अनंत गुणा, वो अनंतों में भी कितने वेरिएशन हो गए। अभी एक वाक्य पढ़ लेते इसका अल्प बहुत्व। अल्प बहुत्व कहते हैं जघन्य स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेद, स्पर्धक बराबर लिखना, अल्प बहुत्व में हु भी ह्रस्व करना। जघन्य स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेद सबसे स्तोक है, उनसे उत्कृष्ट स्पर्धक के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुणे हैं। जैसे हमेशा हम ऊपर नीचे का अल्प बहुत्व बताते हैं, उनसे अजघन्य अनुत्कृष्ट स्पर्धकों के अविभाग प्रतिच्छेद अनंत गुण है। यानी जघन्य को भी छोड़ो उत्कृष्ट को भी छोड़े, पहले हमने वर्गणाओं में लगाया था, अभी पूरा स्पर्धक में लगाना है। गुणकार क्या है? वही गुणकार बताएंगे, अभव्य सिद्धों से अनंत गुणा और सिद्धों के अनंत वे भाग मात्र गुणकार है, स्पर्धक प्ररूपणा समाप्त हो गई। अब ये अंतर की प्ररूपणा हम कल देखेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तकनम सदा देत हो।